वेद है स्वर में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
आखिर मुझको किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि किस प्रकार यूहन्ना एक सच्चे विश्वासी का शिक्षक पवित्र आत्मा के द्वारा होने की बातें कहता है, और इतना ही नहीं वह यह भी प्रकट करता है कि किस प्रकार से उसके उद्देश्य हैं कि हर एक विश्वासी परमेश्वर की संगति में आगे बढ़े। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हमारे श्रोता भाई बहन अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुनना और सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन में से सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। पिता परमेश्वर, अब तक आपने हम सबों की सहायता की है, आपके वचन के द्वारा से आपने हमें सिखाया है, हमसे बोला और बातचीत किया है। आज भी जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमें से हर एक के जीवन से बोले और बातचीत करें, हमारे कमजोरियों को हमें दिखाएं, ताकि हम उसे पहचान कर आपकी निकटता में आ सकें, उसे मन फिरा कर आपसे प्यार कर सकें। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों पर अपनी आशीष दे और हम सबकी सहायता कर। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और हम देखेंगे कि एक सच्चे विश्वासी का शिक्षक पवित्र आत्मा है जो बाइबल की बातों के भेद को उस पर प्रकट करता है। यूहन्ना कहता है कि उसका पत्र लिखने में उद्देश्य यह नहीं कि हम सत्य को नहीं जानते, परंतु यह कि हम भरमाने वालों की शिक्षा के कारण सत्य से भटक ना जाएं। जो कोई सुसमाचार से अलग कोई शिक्षा देता है वह मसीह का विरोधी है, वह प्रभु यीशु की देह धारण में विश्वास नहीं करता है, न ही वह उसके पुनरुत्थान में विश्वास करता है, जबकि वह हमारे मध्य ऐसा दिखाता है कि वह हम ही में से एक है। मेरे प्रियो, सच तो यह है कि वह शैतान है, झूठों के सरदार का प्रतिनिधि करता है, उसमें सत्य नहीं है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे पहला योहना की पत्री 2:21। पहला योहना की पत्री 2:21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा है कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। यहां पर वह कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते। उन्होंने सुसमाचार सुना था और सत्य को जान गए थे। यूहन्ना उन्हें कोई नई बात यहां पर नहीं लिख रहा है, वह उन्हें दो उद्देश्यों के निमित्त लिख रहा था। एक उद्देश्य तो यह था कि उन्हें प्रोत्साहित करे और दूसरा उद्देश्य था कि उन्हें चेतावनी दे, क्योंकि उनके मध्य झूठी शिक्षाएं फैलाई जा रही थी। तब वह आगे कहता है, पर इसलिए कि इसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। मेरे प्रियो, यूहन्ना कह रहा है कि उन्हें सत्य का ज्ञान था, परंतु अब झूठ प्रवेश कर रहा था, ज्ञानवाद का प्रवेश हो रहा था और अनेक मसीही विरोधी, ख्रिस्त विरोधी उठ खड़े हुए थे। हमने देखा है कि मसीह का विरोधी कौन है, परंतु अब यूहन्ना इसके विषय कुछ अधिक विस्तार से हमें बताता है। तो आइए देखें पहला यूहन्ना की पत्री 2:22 में यहां पर लिखा हुआ है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। मेरे मित्रों, भाषा कठोर है, कहता है झूठा कौन है? सब झूठ एक ही में है, झूठों के सरदार में अर्थात शैतान में। शैतान का एक प्रतिनिधि आने वाला है, वह कौन है? वह झूठा होगा। झूठा वह है जो सच नहीं बोलता। वह कहता है झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। यूहन्ना अब हमें ख्रिस्त विरोधी की परिभाषा देता है, वह ख्रिस्त विरोधी का देह धारण होगा, परंतु मसीह के विरोधी अनेक हैं। यूहन्ना के युग में अनेक मसीह के विरोधी थे और आज भी अनेक मसीह विरोधी हैं। ये कौन है? उन्हें पहचानना आसान है। जी हाँ, वे प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। वे स्वीकार नहीं करते कि मानव यीशु ही मसीह है, परमेश्वर है, वह जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसका चित्रण पुराने नियम में किया गया है। इससे इनकार करना मसीह का विरोधी होना सिद्ध होता है। मेरे मित्रों, आज संसार में अनेक संप्रदाय हैं जो उसकी नकल करते हैं, उसका स्थान लेना चाहते हैं, परंतु वास्तव में वे मसीह यीशु के विरोध में हैं। आरंभिक कलीसिया में ज्ञानवादी मसीह के विरोधी थे। आयरेनियस ने कहा था, वे अर्थात ज्ञानवादी कहते हैं कि प्रभु यीशु यूसुफ का पुत्र था और अन्य मनुष्यों की नाई जन्मा था। आयरेनियस अपने युग के ज्ञानवादियों को इस प्रकार पहचानता था। आज मुक्त विचारवादी, अन्य संप्रदाय तथा पंथ यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। वर्षों पूर्व डॉक्टर विलियम ई हॉकिंस डावर्ड यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के अध्यापक ने कहा था, परमेश्वर अपने संसार में है परंतु अन्य देव अपने अपने कक्ष में हैं। हम उनको धन्यवाद कहते हैं परंतु उनके पास लौट कर नहीं जाएंगे। यह स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करना है। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर का इनकार करना मसीह के विरोधी की पहचान है, और आज निश्चय ही अनेक मसीह विरोधी हैं, और उसे पहचानना आपका काम है। मेरे मित्रों, यूहन्ना ने हमें स्पष्ट समझाया है कि मसीह के विरोधी की पहचान है कि वह पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु का इनकार करता है। पद 23 में वह अधिक स्पष्ट कहता है कि आप पिता परमेश्वर का इनकार किए बिना पुत्र परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकते हैं। आपके लिए प्रभु यीशु का ईश्वरत्व अति आवश्यक है, क्योंकि यदि वह परमेश्वर नहीं है तो 2014 वर्ष पूर्व क्रूस पर मरने वाला मनुष्य आपका उद्धारकर्ता नहीं हो सकता। वह तो अपना भी उद्धारकर्ता नहीं हो सकता है। हम मनुष्यों में कोई भी किसी के लिए नहीं मर सकता है। अतः हमारे उद्धार के निमित्त परमेश्वर को मनुष्य बनना आवश्यक था। अतः यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 2:23 पद में, कृपया ध्यान से सुनिए, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। मेरे मित्रों, यदि आप कहें कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं, तो सच तो यह है कि आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। निश्चय ही बाइबल के परमेश्वर में तो नहीं करते हैं। बाइबल का परमेश्वर वह परमेश्वर है जिसने इस संसार में अपने पुत्र को भेजा कि हमारे पापों के लिए अपनी जान की आहुति दे। क्योंकि पुत्र परमेश्वर है, वही एकमात्र हमारे पापों के लिए परमेश्वर को संतोषदायक बलिदान चढ़ा सकता था। यदि वह परमेश्वर ना होकर कोई और होता तो स्वयं ही पापी होता। किसी कलीसिया की पत्रिका में मैंने कभी पढ़ा था, यहां आराधना करने वाले आप कोई भी हो, आप जिस किसी विश्वास के परिवार में जन्मे हैं, आपका जो भी विश्वास है, यदि आप इस पवित्र स्थान में अपने परमेश्वर को खोजने आते हैं या जिस परमेश्वर में आप विश्वास करते हैं उसके लिए पुनः समर्पण करना चाहते हैं, तो यहां आपका स्वागत है। उसमें शांति और परमेश्वर के पिता होने के विषय बहुत कुछ लिखा था, परंतु उससे मुझे कुछ मिलती है। यह सुनने में अति मधुर और कर्णाक्षक लगता है और मनुष्य के मन को छूता है, परंतु यूहन्ना का तात्पर्य है कि हम इससे सावधान रहें, क्योंकि यह मसीह का विरोधी है। हमें इस एक अति महत्वपूर्ण पद पर बल देना है, जी हां, क्योंकि यह हमारी रक्षा करता है। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 24 पद में आगे लिखा हुआ है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। वह कहता है वही तुम में बना रहे, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना। यूहन्ना की पहली पत्री में आरंभ का अर्थ है प्रभु यीशु का देह धारण का युग। तुमने जो उसके देह धारण, उसके जीवन, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान के विषय में सुना, या दूसरे शब्दों में प्रेरितों के प्रचार के आरंभ ही में सुना था। वह कहता है जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हमारे एक श्रोता ने हमारा बाइबल अध्ययन रेडियो पर सुना, जैसे आप सुनते हैं, और उसी समय उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसे मसीही सेवा संस्था का प्रधान बनाया। तब से अब तक उसने हजारों युवाओं को प्रभु के ज्ञान से परिचित करवाया है। मैं इस व्यक्ति की गवाही के लिए परमेश्वर का आभारी हूं, क्योंकि यूहन्ना कहता है कि यदि आप उसमें बने रहेंगे तो वह एक प्रमाण है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। अतः यह अति महत्वपूर्ण है कि आपका विश्वास जीवित हो और उसमें आधारित हो जो 2014 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आया था। यूहन्ना अपने सुसमाचार वृतांत में लिखता है 1 अध्याय उसके 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यह कैसी महान बात है। और 1 अध्याय के 18 पद में फिर यूहन्ना लिखता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, केवल एकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसने उसे प्रकट किया। उसने परमेश्वर को ऐसा प्रकट किया कि हम उसे पहचान सकें, क्योंकि वह मनुष्य बना, हम उसे जान पाएं। इसकी एकमात्र विधि यही है। जी हां, धर्मशास्त्र के इस संपूर्ण अंश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, पिता और पुत्र के साथ सहभागिता करना। यहां महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि मसीह में विश्वास द्वारा मसीही जीवन जीना, परंतु यह कि उसके साथ सहभागिता करके उसकी संगति का आनंद लेना। जिस प्रकार आदम और हवा परमेश्वर की संगति का आनंद लेते थे, प्रतिदिन परमेश्वर उनसे मिलने के लिए अदन की वाटिका में आता था। मेरे प्रियो, यह अति आवश्यक है कि हम भी परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 25 पद में लिखा हुआ है, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। परमेश्वर जो जीवन देता है वह अनंत जीवन है। यदि आप कल या अगले सप्ताह या अगले वर्ष उससे वंचित हो जाएं, तो वह आपका अनंत जीवन नहीं है। यह अनंत जीवन नहीं, कोई और जीवन है। परमेश्वर मुझे और आपको अनंत जीवन देना चाहता है। मेरे मित्रों, हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 26 पद में। यहां पर लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। भरमाते अर्थात सत्य से दूर ले जाते हैं। यह एक अच्छा शब्द है, क्योंकि यह भौतिक और आत्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रासंगिक है। अतः हम कह सकते हैं कि सत्य से दूर होने का अर्थ है आत्मिक व्यभिचार। मेरे प्रियो, यूहन्ना के युग में प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता का इनकार करने वाले आ चुके थे। वे प्रभु यीशु को देहधारी परमेश्वर नहीं मानते थे और विश्वासियों को वे गुमराह करते थे, भरमाते थे। यूहन्ना कहता है कि हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से अनंत जीवन प्राप्त होता है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसमें और कुछ जोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हां, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और वह हमें अनंत जीवन देना चाहता है, और अनंत जीवन हर एक के लिए है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। आज मुझे खेद है कि अनेक विश्वासी नाना प्रकार के अध्ययनों में जाते हैं और उनकी संकट स्थिति यह है कि उन्हें ज्ञान के अहंकार के कारण पाखंडी होने की संभावना है। वे अपने ज्ञान में इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि वे परमेश्वर की निकटता को भूलकर अपने ज्ञान की घमंड करने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीही छोटे समूह के द्वारा प्रभु को जान रहे हैं, परंतु दुखद बात तो यह है कि वे परमेश्वर के ज्ञान को भी अधिक बढ़ा चढ़ा करके गलत तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपको और मुझे सावधान रहना है कि आप किस प्रकार की संगति में हैं, किस प्रकार के अध्ययन समूह में हैं, ताकि आप परमेश्वर की सत्यता में बने रहें। एक दिन एक महिला ने मुझसे अपने पति की शिकायत की, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह एक अच्छा विश्वासी था। यह महिला किसी बाइबल अध्ययन में जाने के कारण अपने पति को अज्ञानी समझ रही थी। वह सोचती थी कि वह अपने पति को सिखाने के योग्य है। सच तो यह था कि उसका पति बुद्धिमान था, और क्योंकि वह अपनी पत्नी के समान नाना प्रकार के बाइबल अध्ययन में नहीं जाता था, इसलिए उसने जो भी वचन सुना था उसका प्रभाव उसके जीवन पर था। अतः अपने सत्य को सबसे बड़ा समझने का संकट हम विश्वासियों पर बना रहता है, और यही कारण होता है कि कई बार हम सिर्फ सुनते हैं परंतु उसके अनुसार नहीं चलते हैं। यदि आप प्रभु यीशु के ज्ञान और अनुग्रह में विकास करते हैं तो आपका अनुभव यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के तुल्य होगा। उसने कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 30 पद में, अवश्य है कि वह अर्थात प्रभु यीशु बढ़े और मैं घटूं। मेरे मित्रों, मैं बाइबल अध्ययन करता हूं तो मेरा अज्ञान प्रकट होता है, और यह सच है कि मैं इस समय ऐसा बाइबल अध्ययन कर रहा हूं जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया। बाइबल अध्ययन समाप्त करने पर मैं सोचता था कि मुझे बहुत कुछ आता है, परंतु अब मैं सोचता हूं तो मुझे उस पर लाज आती है और मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर की संतान के लिए ज्ञान का अतः सागर है, अतः हमें वचन के द्वारा प्रभु यीशु को जानना और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। यही तो यूहन्ना कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम पाखंडी बनो, मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर करो। मेरे प्रियो, अब यूहन्ना हमसे कहेगा प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता जानो और इस पर दृढ़ रहो, तथा उसके साथ और पिता परमेश्वर के साथ सहभागिता की लालसा करो, वरन उनके साथ सहभागिता करो तथा विश्वासियों की संगति में बने रहो। मेरे मित्रों, कई बार हम इस बात को सुनते हैं परंतु हम ऐसा नहीं कर पाते। परमेश्वर का वचन हमें बार बार आगाह करता है कि हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु ही हम मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, जो मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आया, जिस पवित्र बलिदान को कोई मानव जाति कोई मनुष्य नहीं दे सकता था। उससे पूरा करने के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर होकर के भी मनुष्य के रूप में आया और हमारे पापों को अपने ऊपर में उसने ले लिया, हमारे दोषों को उसने अपने ऊपर में ले लिया और हमारे बदले क्रूस पर चढ़ गया और उसने हमारे बदले मृत्यु को सही, ताकि मैं और आप उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं, मुक्ति पाएं, मोक्ष पाएं। मेरे मित्रों, आज आपके लिए और मेरे लिए क्या ही सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए किसी ने उस कार्य को कर दिया है जिसे हम नहीं कर सकते थे। अब सिर्फ मुझे और आपको एक काम करना है कि हमें प्रभु यीशु के पास आना है, क्योंकि वह मरा ही नहीं परंतु मर करके वह जी उठा, आज भी जीवित है, और यही कारण है कि वह हमारा उद्धार करता है। और इसीलिए यूहन्ना कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम यीशु पर विश्वास करें तो हम अनंत जीवन पाते हैं। मेरे मित्रों, क्या आज आप अपने पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं? क्या आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? यदि हां, तो आज प्रभु यीशु के पास आएं, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और निश्चय जाने कि वह आपके पापों को क्षमा कर आपको अनंत जीवन देंगे। आपके साथ उसकी सहभागिता होगी और आप उन शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे जिसकी आप लालसा करते हैं। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप वचन के ज्ञान में बढ़ते चले जाएं, घमंड न करें परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर रहें। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
उसको यकीन था छू के यसु को वो अच्छी हो जाएगी, दिल में था ईमान शिफा यसु के तर से पाएगी। उसको यकीन था छू के यीशु को वो अच्छी हो जाएगी। दिल में था ईमान शिफा, यीशु के दर से पाए।